ब्रह्म विज्ञान केन्द्र श्री कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत अभी विशेष कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रस्थानत ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ जिसको स्मृति प्रस्थान कहा जाता है इसका प्रारंभ हुआ कल तक द्वितीय अध्याय में से अष्टादश श्लोक तक हो गया था। भगवान अर्जुन को कहते हैं एक आत्मतत्व ही अविनाशी है जो कि व्यापक है और बाकी उससे भिन्न जितने सब अनित्य है। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सुख दुख आदि जितने हैं वो वास्तव नहीं है, आत्मतत्व से भिन्न कोई वास्तव नहीं है, इसलिए उनको सहन करना है। पहले तो अवश्यंभावी है, सहन करना चाहिए, और दूसरा कहा आगमापाई अनित्य है, उनका सहन करो, और आगे कहते जो इसको सहन कर लेता है वो मुक्त होने के लिए मोक्ष के लिए समर्थ होता है। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, अपने कर्म फल सबको भोगना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। सहन करते हुए प्रसन्न होकर सहन कर ले, अपने कर्म फल मान करके, दूसरे को दोष नहीं दे करके, निंदित कर्म नहीं करके, कोई सुख दुख मिलता है तो उसके कारण दुखी होकर के कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्रोध के कारण जैसे सुख दुखों के कारण भी कुछ कर लेते, पाप अधिक कर लेते, दूसरे को कष्ट देते, दोष देते, उससे अधिक पाप होता है। भगवान कहते इसको सहन कर लो, और सहन करने पर जिसको कोई सुख दुख आदि व्यथित नहीं करते, मार्ग शिक्षित नहीं होता है, अपने लक्ष्य पर चलता है, वही मोक्ष के लिए समर्थ होता है। और आगे कहते हैं कि विचार करना है, देखो वास्तव जो सर्वत्र हो सर्वदा हो वही सदरूप है, वही पारमार्थिक है। जो सर्वत्र नहीं सदा नहीं कभी है कभी नहीं, मरु मरीचिका जिसे दिखते समय भी है ही नहीं, राज्य में सर्प दिखते समय भी नहीं है, सपना प्रपंच दिखता है किंतु जगने के बाद नहीं है, सोने के पहले नहीं था, इसे दिखते समय भी नहीं है। इसी प्रकार यह प्रपंच जो दिखता है दिखने पर भी श्रुति कहते नेह नानास्ति किंचन, यह कहा था ब्रह्म में यहां नाना है ही नहीं, कुछ भेद है ही नहीं, नहीं होने पर भी दिखता है तो उसको मिथ्या कहते हैं। यद्यपि अनुभव नहीं हुआ हमको सत्य जैसे लगता है, सबको सत्य लगता है, अनादिकाल से सत्य तो बुद्धि इतने दृढ़ हो गई, मिथ्या कहने वाले भी सत्य मिथ्या कहते हैं, जगन मिथ्या तो भी सत्य तो बुद्धि जाती नहीं, देह में नहीं हूं सबको मालूम है तो भी मैं मनुष्य हूं, कुछ यदि कहेगा तुम मनुष्य हो या पशु हो और क्रोध हो जाएगा, क्या तुम सोते तुम अंधे हो क्या, हमको पशु कह दिया, क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है हम मनुष्य है, पशु है या मनुष्य कहें तो क्या है इसका अर्थ, पशु नहीं हम मनुष्य है, तो मनुष्य तो देह में है आत्मा में नहीं है, आत्मा अलग देह अलग, देह में आप है देह आप नहीं, मकान में आप है आप मकान नहीं, जिस मकान में रहते हैं उसी मकान को मैं समझ लिया, कितने बुद्धिमत्ता है, जिस शरीर में उस शरीर को मैं समझ लिया। और भगवान कहते जो आत्म तत्व आप देह के अंदर नहीं बाहर सर्वव्यापक है, ये तो सत्य हुई है, ये अविनाशी तत्व है, ये न सर्वमिदम तत्म सर्वव्यापक आत्म तत्व, जो है वास्तव उसका अभाव कभी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, जो अवास्तव पदार्थ है दिखते समय भी नहीं है, जो अवास्तव पदार्थ हो कभी नहीं है कहीं नहीं, दिखने पर भी नहीं है, स्वप्न में गज हत्यादि दिखते हैं, राज्य में सर्प दिखता है प्रसिद्ध है, मरु में मरीची का जल दिखने पर भी वो जल कहीं भी नहीं है, मरीची का दिखते समय भी नहीं, राज्य में जो सर्प दिखता है वो सर्प कहाँ है, राज्य में है या जंगल जंगल में है, वो सर्प कहीं यही नहीं, मन में है, मन में भी कल्पना करते वास्तव है ही नहीं, कभी नहीं कहीं नहीं है। इसी प्रकार जगत दिखते समय भी नहीं है, श्रुति जब मना करते नेह नाना अति किंचन, हमको दिखता है, दिखने पर भी वास्तव नहीं है, अपारमार्थिक है। और जब पारमार्थिक तत्व है वो दिखे अथवा नहीं दिखे उसका अभाव हो नहीं सकता है, इसका नाश हो नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, जो आत्म तत्व अविनाशी पारमार्थिक है उसका विनाश कौन कर सकता है। ये तत्व का निश्चय करके जो वास्तव तत्व है सर्वत्र है, सर्वदा है, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चतुर्थी भागवत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासनात्मन, आत्म तत्व को जो जानना चाहता है, परमात्मा दर्शन करना चाहता है, इतना ही जानना चाहिए, ये साक्षात्कार करे किसका, यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो सर्वदा वही आत्म तत्व है। कैसे जानेंगे, कहते अन्वय व्यतिरिका अभियान, जो सर्वत्र अन्वित होता है संबद्ध होता है वही सत्य, जो जिसका अभाव हो गया वो मिथ्या है। व्यतिरिक शब्द का तो अभाव, घट पट है, घड़ा को पट कहते है, अरे पट को घड़ा कहते है, नहीं घट का पट में, पट का घट में अभाव हो गया, किन्तु घट भी है पटो भी अस्ति, घट सन पट सन सदरूप घट है पट है, घट भी सत है पट भी सत, देखो सत का अन्वय पांच है, ये इदम अस्ति यम अस्ति एतद अस्ति अयम अस्ति अस्ति अस्ति, एक दो दो एक नहीं, एक दो नहीं, द्वितीय तृतीय नहीं, तृतीय द्वितीय नहीं, प्रथम तृतीय नहीं, तृतीय पंचम नहीं, किन्तु प्रथम अस्ति द्वितीय अस्ति तृतीय अस्ति सब अस्ति सत सत सत, जहां देखो सत 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 सब का अन्वय हुआ, और एक का दूसरे में इसका उसमें व्यतिरिक हो गया। ये अन्य व्यतिरिक युक्ति के द्वारा भगवान कहते विष्णु भगवान चतुर्श्लोकी भागवत में, जिसका अन्वय सर्वत्र होता है, सर्वत्र है वही सत है, सर्वत्र हो और सर्वदा हो, उसका नाश नहीं होता है तीनों काल में, और इसका नाश कोई नहीं कर सकता, भगवान ने कहा। आगे कहा अविनाशी उसको समझो जो सर्वव्यापक है, इसका विनाश नहीं कर सकता है कोई कर सकता है, बाकी जो देह दिखते हैं वो अंत वाले ही अंतवंत ही में देह, ये श्लोक हो गया था। अपरम आत्म तत्व ये अंत वाला कहने के बाद यहां दो मंत्र वेद के मंत्र कठोपनिषद के मंत्र ही भगवान ने यहां रख दिया, प्रमाण श्रुति प्रमाण है। भगवान कहते गीता शास्त्र यदि श्रुति सम्मत नहीं हो तो उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा, श्रुति सम्मत वाक्य ही प्रमाण है, भगवान कहते कह करके श्रुति विरुद्ध हो तो प्रमाण कोई नहीं मानेगा। श्रुति प्रमाण देने के लिए सारे शास्त्र पुराण में श्रुति सम्मत वेदांत सिद्धांत को सरल करने के लिए व्यास जी ने कुछ आख्याय के माध्यम से उपदेश किया, कुछ अलग नहीं, वैदिक सिद्धांत ही मूल सिद्धांत है, उसका स्पष्टीकरण जैसे ईशावास्यमिदम सर्वम पहले उपनिषद में कितने शाखा है वेद में 1180, सबसे प्रथम उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद उसमें प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यचित् धनम, ये जो मंत्र है ठीक इसी को भागवत में आया, ईशावास्य के स्थान पर आत्मा कर दो, बाकी सब जोड़ संभाव आत्मावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्यचित् धनम। मंत्र पढ़ने के लिए वेद मंत्र पढ़ने के लिए नियम शास्त्र में उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन करना होता है, ब्राह्मण का लड़का हो यदि उपनयन नहीं किया एक भीतर संस्कार नहीं हुआ जितने विद्वान हो जाए वेद मंत्र नहीं पढ़ सकता है। अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित, एक पारमार्थिक तत्व अद्वितीय ब्रह्म है उसमें कोई संशय नहीं है, किन्तु व्यवहार में मनुष्य पशु व्यवहार वर्णाश्रम व्यवहार है, धर्म तो वर्णाश्रम धर्म है, तो जिसके लिए जो कहा गया वही उसमें अधिकारी है। तर्क करें क्यों हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं क्यों पढ़ेंगे, शास्त्र में आया अधिकारी है, यज्ञ वित्त संस्कार होगा तो वैदिक मंत्र जप कर सकता है, वेद मंत्र अध्ययन कर सकता है, जब यज्ञ वित्त संस्कार नहीं कराता है रखता नहीं कोई ब्राह्मण भी यदि हो यज्ञ वित्त नहीं रखता है तो वेद मंत्र अध्ययन जपने के अधिकार नहीं होगा, इसलिए व्यास जी ने जिनका वेद पढ़ने का अधिकार नहीं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, और वेद पढ़ने का अधिकार होने पर भी जो नहीं पढ़ते नहीं समझते वो सबके ऊपर कृपा करने के लिए अष्टादश पुराण की रचना की। तो इसमें सब वो मंत्र जो वेद में आया उसी को ही यहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह मंत्र में जैसे कि कठोपनिषद में है उसी प्रकार दो श्लोक यहां थोड़ा सा एक दो तीन पद कुछ अलग है, नहीं तो बराबर है। तो ब्रह्मसूत्र में एक अपशूद्र अधिकरण आता है जिनका अधिकार नहीं वेद अध्ययन करने के लिए, उनको स्मृति से इतिहास महाभारत से गीता से योगवासी आदि ग्रंथ से ज्ञान होने में कोई निषेध नहीं है, इसलिए हठ नहीं करके शास्त्रीय मत पर चलना चाहिए। ये प्रमाण है, भगवान यहां उपनिषद मंत्र दोनों को ही बोलते हैं किंतु ठीक ठीक उपनिषद पूरा नहीं बोलते हैं, एक दो तीन पद इधर उधर कर लेते हैं। ऐसे शास्त्र में वैद मंत्र सब है किंतु थोड़ा दो चार श्लोक पद इधर उधर कर लिया वो स्मृति हो जाएगी, पौरुषे हो गया, वो वेद मंत्र नहीं हुआ, उसको उच्चारण करने में कोई दोष नहीं। साक्षात वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करते किंतु उसमें दो तीन पद इधर उधर एक दो पद हो गया, एक पद आत्मावास्य कर दिया तो बराबर आ गया, तो भी भागवत में ऐसे बहुत श्लोक है शास्त्र में जो वेद मंत्र के बराबर है। कहीं तो अर्थ को अर्थ बराबर है तो बहुत मिल जाएगा, कहीं के शब्द भी बहुत मिल जाते हैं थोड़ा फेर फेर होकर के। तो ये वेद ये मंत्र जो बोले अभी ये वेद में थोड़े दो तीन शब्द आगे पीछे है बताएंगे अभी। ये जो शोकमोह संसार कारण शोकमोह है संसार यही का उसके कारण अज्ञान उसकी निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र है, इसके लिए मंत्र दो भगवान लाकर कह देते हैं। जब तुम मानते हो कि भीष्मादि मरेंगे मैं उनको मारूंगा ये तो झूठा है, अज्ञान के कारण इसे मानते हो। एक तो आत्म तत्व तो मरता नहीं, आत्म तत्व का नाश नहीं होता नित्य, कोई नाश नहीं कर सकते, और आत्मा में कर्तृत्व तो भी नहीं है, तुम कुछ करते हो जो मानते हो भी भ्रांति है। ये दिखाते कैसे है, य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ये न हंतारम व्यक्ति, ये न आत्मा को देही को जो हंता मानता है हनन करता मानता है, जो आत्मा को हनन करता, तुम अपने को मानते हो मैं हनन करता मैं मारूंगा तो मैं हंता हो जाऊंगा। अर्जुन दुखी क्यों है, युद्ध में मैं जिस जिसको मारूंगा उसका हनन करता मैं होऊंगा तो पाप होगा। कहते भगवान कहते ये आत्म तत्व को जो हंता मानता है कि मैं हनन करता हूं, और यश्चे न मन्यते हतम, और जो कहता आत्म तत्व तो मारा जाता है हनन किया जाता है तो मानते मेरे द्वारा ये हत हो जाएंगे विष्म द्रोण आदि युद्ध करूंगा तो, अथवा नहीं तो हमको मार देंगे हम हत हो जाएंगे। आत्म तत्व तो हनन का कर्ता नहीं होता, हनन का कर्म भी नहीं होता है, हनन का कर्म नहीं होता, कर्म होता है जो मर जाएगा हनन का कर्म होगा, क्रिया होने पर एक कर्ता होता है एक कर्म होता है। चैत्रो गच्छति, कर्ता कौन है, चैत्र के व्यक्ति का नाम है। गच्छति ग्रामम गच्छति कहते ग्राम को जाता है, विद्यालय में गच्छति कर्म क्या होगा विद्यालय, कर्ता एक होता है कर्म होता है। चैत्र पठति, कर्ता कौन है क्या पढ़ता है पुस्तक, पठति पुस्तक कर्म हो जाएगा। गीता में पठति कहें तो गीता कर्म हो जाएगा, व्याकरण पठति कहें तो व्याकरण कर्म हो जाएगा। एक कर्ता और एक कर्म ही होता है। और कोई कश्चित हंती वो हनन का करता है, जिसको मारता है हनन का कर्म हो जाएगा। अर्जुन क्या समझता है, हम हंता अर्जुन हंता हंती शत्रु हंती, शत्रु को अर्जुन मारता है तो शत्रु कर्म हो जाएंगे और अर्जुन करता हो जाएगा। केवल अर्जुन के नहीं, जो भी मानता है कि मैं करता हूं और जो मानता आत्मा का हनन होगा आत्मा कर्म हो जाएगा, हनन क्रिया का आत्मा कर्ता होता है या कर्म होता है? दोनों होता ही नहीं। जो मानता है वो तुभो तो न भी जानी, तो जो कहता है आत्मा हनन का कर्ता एक हो गया, और जो मानता आत्मा हनन का कर्म, ये दोनों उभौ तो न भी जाने तो ठीक नहीं जानते। भगवान कहते दोनों नहीं जानते, जो आत्मा को हनन करता मानता है मैं हो अथा दूसरे हो, अहम हंता अथा तम हंता अथा ते हंतार, जो आत्मा को हनन के कर्ता मानता है और जो आत्मा को हनन के कर्म मानता है वो मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं मारूंगा तो वो मर जाएंगे, और वो उसको मारता है तो मर गया। जो हनन के आगे कर्म मानता है एक हनन के कर्ता मानता है, दो में बुद्धिमान कौन है? तो भगवान कहते उभौ तो न बिजानी, तो दोनों ठीक नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? नायम हंती न हन्यति, भगवान कहते नायम हंती न हन्यति, अयं न हंती, आत्मा नहीं मारता है, हनन करता होता ही नहीं, आत्मा हनन का कर्ता नहीं होता है, तो हनन का कर्म होगा। न हन्यते, हनन का कर्म भी नहीं होता है, न मारता है न मारा जाता है, आत्मा का हनन नहीं होता, आत्मा हनन का कर्ता भी नहीं होता है। तो आत्मा हनन का कर्ता हुआ कर्म हुआ? हंती या हंती कहेंगे तो हनन का कर्ता, और कर्म कैसे होगा? हन्यते हतम कहेंगे तो। इसे दोनों यदि कोई मानता है तो दोनों ठीक नहीं जानते। ये मंत्र कठोपनिषद कैसा है? पूर्वाध में हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम। पूर्वाध में अंत में मन्यते हतम है। पूर्वाध में श्लोक देखो, पूर्वाध में मन्यते हतम है, मंत्र में मन्यते हतम पूर्वाध इतने है, बाकी कुछ अलग ही। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेत, हंता चेत मन्यते हंतुम, हनन करता यदि मानता है मैं मारूं, मारना चाहता है, हतश्चेत मन्यते हतम, जो मरा गया वो सबता कि मैं मर गया, देह तो नष्ट होता है, जो मैं मर गया मानता है आगे उत्तरार्थ तो बराबर है। वेद मंत्र ठीक इस प्रकार उभौ तो न बिजानी तो नायं हन्ति न अन्यते। उत्तरार्ध जिस प्रकार यहां गीता में इस मंत्र में है, पूर्वाध में भी मन्यते हतम दो पद गीता में है, वो भी मंत्र में है, और वहां हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेद छे पद अलग है। यैनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं, इतने अंश मंत्र में नहीं, इतने अंश भगवान कहते हैं, अर्थात वेद मंत्र पूरा आ गया, थोड़े दो चार शब्द इधर। तो हनन का कर्ता कर्म नहीं होता आत्मा, इसे तुम कि व्यर्थ ये मानते कि मैं मारूंगा ये मरेंगे, ये आत्मा में ये हनन कर्तृत्व तो कर्म कुछ है ही नहीं। आगे क्यों नहीं आगे बताएंगे? क्योंकि आत्मा अविक्रिय है, कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए अविक्रिय होने के कारण उसमें हनन करता नहीं, हनन का कर्म नहीं होता है। कारण क्या हुआ? आत्मा अविक्रिय है। कैसे अविक्रिय आगे बताएंगे, श्लोक बोलो। य ए न तो अविक्रिय आत्मा है कैसे, उसको भी वेद मंत्र कहता है, उसको भगवान यहां कहते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जायते म्रियते वा, आत्मा अविक्रिय क्यों है? न जायते, आत्मा जन्म नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता है। कोई बच्चा उत्पन्न हुआ तो जो शरीर उत्पन्न होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, न मरता कभी। वा जो दिया है ये समुचय, ना जन्म होता है ना मरता है। न जायते ना भी म्रियते, च करते मरता भी नहीं। कदाचित कदाचित न जायते, कदाचित ना म्रियते। अभी जन्म नहीं होता है, पहले कभी जन्म हुआ होगा। अभी नहीं मरता है तो कभी ना कभी मर जाएगा। सब लोग मरते तो आत्मा भी कभी मर जाएगा, ये नहीं। भगवान कहते कदाचित न जायते, कदाचित न म्रियते। कौन आत्मा तत्व? कभी भी जन्म मरण नहीं होता है। क्यों? नायम भूत्वा अभविता वा न भूय। भूत्वा हो करके आगे नहीं रहेगा, अभविता। भूत्वा भूतागत हो करके, ये पुष्प यहां है ना? नहीं है। इसको हम फाड़ देंगे तो आगे रहेगा, तो आगे क्या हो जाएगा? भवित्री, भविता या अभविता हो जाएगा? अभी है, आगे अभविता। आगे नहीं रहेगा तो अभविता हो जाएगा। किंतु आत्मा तो ऐसा नहीं कि पहले था बाद में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई पहले रह करके आगे नहीं रहेगा तो उसका क्या हुआ बताओ? जन्म हुआ, नाश हुआ? देखो अभी पुष्प है, इसको मैं फाड़ दूंगा तो पुष्प रहेगा? उसके पहले पुष्प रहा था ना। भूत्वा आगे भविता या अभविता? भूत्वा अभविता यदि फाड़ देंगे तो इस पुष्प का जन्म हुआ या नाश हुआ? हो करके जो आगे नहीं रहेगा उसका क्या है? नाश या उत्पत्ति? नाश। उत्पत्ति कभी हो मालूम नहीं। हो करके आगे नहीं रहेगा तो क्या हुआ? नाश हुआ, ये समझो। हो करके आगे नहीं रहेगा तो नाश हुआ। अयम आत्मा भूत्वा अभविता न, नायम भूत्वा अभविता वा। भूत्वा हो करके नहीं रहेगा ऐसा नहीं, अर्थात उसका नाश नहीं होगा या जन्म नहीं होगा? नाश दोनों किसे? अभी हो करके आगे नहीं रहेगा तो क्या? हो करके जो आगे नहीं रहेगा उसका क्या होगा? नाश। अभी हो करके आगे नहीं रहेगा तो क्या हो गया? नाश हो गया। जो हो करके आगे नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, उसका क्या नहीं है? नाश नहीं है। खाली सुनकर के सुनने से नहीं होगा, कोई बुद्धि को लगाना पड़ेगा। अयम आत्मा भूत्वा अभविता न, नायम भूत्वा अभविता वा न, नहीं कन से अभूत्वा भविता ये भी नहीं है। कैसा कथन करना? न वा या अभूत्वा भविता, पहले नहीं हो करके आगे होगा। जो पहले नहीं था आगे होता है, जो वृक्ष पहले नहीं था आगे हुआ, जो व्यक्ति पहले नहीं था अभी जन्म हुआ, संभव है? जो नहीं था ये पुष्प पहले नहीं था आगे खिल गया। अभूत्वा भविता तो उसका कैसे करना? भूत्वा अभविता था ना। न वा कौन से भगवान ने कहते है, यही सब अर्थ करो। अभूत्वा भविता, पहले नहीं था नहीं होकर के आगे होगा तो क्या उसका होगा? उत्पत्ति जन्म होगा। जो पहले नहीं था आगे हो तो उसकी उत्पत्ति होगी। तो आत्मा पहले नहीं था आगे होता है ऐसा है? ये भी नहीं। तो आत्मा की उत्पत्ति है या जन्म है? हैं? क्या है? नहीं नहीं, त्रिकाला बाध्यता का प्रश्न नहीं। त्रिकाला बाध्यता का कुछ दूसरे अर्थ है। उसकी उत्पत्ति है या नाश है? देखो उत्पत्ति नहीं है कहने के लिए क्या अर्थ करना? अभूत्वा भविता इति न, अभूत्वा नहीं हो करके आगे होता है ऐसा नहीं है। तो किसका निषेध होगा? जन्म का। और जन्म का निषेध करने के लिए क्या कहेंगे? अभूत्वा भविता इति न। क्या कहेंगे अभूत्वा भविता इति न, इसके द्वारा निषेध किसका होगा? जन्म का। और नाश का निषेध कैसे करेंगे? हाँ, भूत्वा अभविता न, किसके किसका निषेध होगा? जन्म का निषेध कैसे होगा? अभूत्वा भविता इति न। उत्पत्ति का निषेध कैसे करेंगे? अभूत्वा भविता इति न, ये दोनों ले ना, नायम भूत्वा अभविता वा ना भूय भूय हो करके नहीं रहेगा, ये बात नहीं हो करके होगा, ऐसा ही नहीं होने से क्या सिद्ध हुआ? आत्मा का जन्म नहीं नाश नहीं, इसलिए अजो, इसलिए अजन्मा हो गया, अजो हो गया और नित्य हो गया। जिसकी उत्पत्ति नहीं और नाश नहीं है वो नित्य होगा है? जिसकी उत्पत्ति नहीं नाश है नित्य है, अजन्मा है नित्य है। और शाश्वत हो, शाश्वत होने वाला पुराण, पुराण मतलब पूरा आप ही न, वो कोई पुराना हो जाता है, कपड़ा पुराना हो गया फेंक दो, जूता चप्पल पुराना तो फेंक दो, मकान पुराना हो गया तोड़कर नए बना दो, किंतु आत्मतत्व तो पुराण मतलब पूरा अपि नव, सबसे पुराना है तो और भी नया है, पूरा अपि नव, पुराने का था पूरा अपि, पूरा प्राचीन सबसे अनादि पहले है तो भी नया हमेशा है, पूरा अपि नव पुराण। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्य माने, शरीर का हनन हो सकता है? शरीर का हनन होने पर आत्मा का हनन नहीं होता है। हन्य माने शरीरे न हन्यते, आत्मतत्व नहीं मारा जाता है। यहां जो पहले बताया था मंत्र, मंत्र है न जायते म्रियते वा कदाचित के स्थान पर, मंत्र में विपश्चित, विपश्चिति विद्वान, यहां न जायते मियते वा कदाचित, अरे वेद मंत्र में क्या न जायते मियते वा विपश्चिति, आगे नायम भूत्वा भविता वा न भूय के स्थान पर नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, न किससे हुआ न कोई उत्पन्न हुआ, ऐसे करके थोड़ा सा भेद है, वही मंत्र है। जन्म जिसका नहीं है उसका नाश होगा क्या? जो पहले से अनादिकाल से ऐसे मानते हैं, ये तार्किक लोग बताते जन्म नहीं हुआ किंतु उसका नाश होता है, ये कलम उत्पन्न हुआ, ये कलम जो कलम की उत्पत्ति हुई इसके पहले ये कलम थी या नहीं, लेखनी थी या नहीं, अन्य लेखनी थी, इस लेखनी बनने के पहले ये लेखनी नहीं थी, तो उसका अभाव था, किसका अभाव था? ये कलम का अभाव था। कब से था? एक कलम के अभाव की उत्पत्ति कब हुई थी? कलम की उत्पत्ति के पहले उसका अभाव था, उसका नाम है कलम का प्राग अभाव, पहले अभाव बनने के पहले अभाव प्राग अभाव। कलम के प्राग अभाव कब उत्पन्न हुआ था बताओ? अनादिकाल से उत्पन्न हुआ, वे कलम का प्राग अभाव कब से उत्पन्न हुआ? उत्पन्न नहीं हुआ, यही बताओ, कलम का प्राग अभाव उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि होने से उत्पन्न नहीं हुआ, अनादि से उत्पन्न नहीं, कब उत्पन्न हुआ? अनादिकाल से, अनादिकाल से उत्पन्न हुआ, अनादिकाल मतलब उसके आदि है ही नहीं, उत्पत्ति नहीं है, अनादि है। कलम का प्राग अभाव सब पदार्थ के जो कार्य बनते हैं सब का प्राग अभाव अनादि है। अच्छा, कलम जिस समय बन गया वो अभाव रहा, नाश हो गया, किसका नाश हुआ? तो प्राग अभाव एक पदार्थ हुआ जिसकी उत्पत्ति नहीं किंतु नाश होता है, उत्पत्ति नहीं किंतु नाश होता है, कौन? प्राग अभाव, किंतु अभाव पदार्थ है, भाव पदार्थ ऐसा कोई नहीं जो उत्पत्ति नहीं हो नाश हो जाए, ऐसा नहीं है। और आत्मतत्व की उत्पत्ति नहीं नाश भी नहीं कह देने से दोनों का जो निषेध हो गया, अन्य कोई विकार उसमें हो सकता है? जिसकी उत्पत्ति नहीं और नाश नहीं हो उसमें कोई विकार होगा? विकार भाव पदार्थ में छह विकार होते हैं। निरुक्तकार यास्क मुनि ने कहा है, पढ़ा है, शास्त्र में प्रसिद्ध है, विद्वानों को कहते हैं छह विकार होते हैं। कोई पदार्थ ये कलम हो, पुष्प हो, कोई पहला है तो जायते, उत्पन्न होता है, जन्म होता है। इदम पुष्पम अस्ति, पुष्प है, अस्तिवे के विकार हुआ उत्पत्ति के बाद जो अस्ति, और जायते अस्ति वर्धते। पुष्प जो होता है शुरू से इतने बड़ा था, छोटा था, बड़ा हुआ, वर्धते, बढ़ने के बाद फिर बाद में क्या होता है, विपरिणामते, धूप लगने के बाद गर्मी हवा से फिर सूखने लगा से विपरिणाम होता है। फिर उसके बाद एक पाता गिर जाएगा, टुकड़ा गिर गया, फिर अपक्षयति क्षय होता है, फिर बाद में विनश्यति। कितने हुआ, छह। जायते पहला, अस्ति दूसरा, कहेंगे अस्ति जायते से भी पाठ होता है, किंतु अस्ति शब्द जायते के उत्पत्ति के पहले अस्ति कैसे होगा। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यति। जन्म और नाश ये दोनों का निषेध कर देंगे, बाकी चारों का भी निषेध हो जाएगा, हो सकता है, तो भी शब्द स्वयं अपने भगवान सबका अलग अलग निषेध करते हैं। जन्म मरण का निषेध करने से अन्य का भी निषेध हो सकता है, फिर भी अलग शब्द से निषेध करते हैं। कैसे, देखो शाश्वत कह करके अपक्षय का निषेध किया, नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। नित्य कहा फिर शाश्वत कहा, न जायते कहा फिर अजो कहा, न जायते मृियते कह करके, क्योंकि जो नहीं हो करके आगे होगा वह उसकी उत्पत्ति है, पहले नहीं था आगे होगा, तो जो हो करके आगे जिसका अभाव हो जाएगा उसका सत्य समझ आएगा, आगे क्या दिमाग लगाएंगे। जो हो करके आगे नहीं रहेगा उसका क्या हुआ, जो हो करके आगे नहीं रहेगा तो उसका नाश हो जाए, जो नहीं हो करके आगे होगा तो उसका जन्म। तो ये न जाए थे मृत्यु जो है इसके प्रतिपादन करने के लिए कहते नायम भूत्वा अभविता, हो करके नहीं रहेगा ऐसा नहीं है, इसलिए इसका नाश नहीं होता है। जिसका नाश होता है कुछ समय रहा आगे नहीं रहेगा, घड़ा है आगे नहीं रहेगा तो हो करके नष्ट हो गया, और नहीं हो करके उत्पन्न होता है आगे ये भी नहीं है, इसलिए अजन्मा हुआ, और नित्य फिर क्या नित्य हुआ, फिर शाश्वत। शाश्वत से क्या करना, अपक्षय रूप परिणाम का विकार का निषेध करना। कितने विकार है भाव पदार्थ में, अभाव का कोई विकार नहीं होता है। किसका विकार नहीं होता है, अभाव का कोई विकार नहीं, अभाव का भाव पदार्थ में। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, अब शाश्वत के द्वारा शाश्वत करके कह करके किसका निषेध किया, अपक्ष का निषेध किया। वो अपक्ष कौन सा, प्रथम या द्वितीय तृतीय कौन सा, पंचम, ठीक है। पुराण कह करे पूरा अपि नव, पहले से है फिर बड़ा नहीं है, वृद्धि का निषेध किया। पुराण कह करके किसका निषेध करना, वर्धते वृद्धि का, वृद्धि कौन सा है क्रम बताओ, जायते अस्ति वर्धते। तृतीय का निषेध किसके द्वारा हुआ, और अपक्ष का निषेध किसके द्वारा हुआ, शाश्वत। नहन्यते का अर्थ या विपरिणाम का निषेध किया, नहन्यते से किसका निषेध करना, या हन धातु विपरिणाम अर्थ में, नहन्यते विपरिणाम नहीं, विपरिणाम कौन सा विकार है, चतुर्थ, विपरिणाम चतुर्थ है, पंचम क्या है, अपक्ष, हाँ ठीक है। चतुर्थ का निषेध क्या, अन्यते करके, और पंचम का किसके द्वारा निषेध होगा, शाश्वत के द्वारा, और षष्ठ का निषेध किसके द्वारा, षष्ठ क्या है, विनश्यति, उसका निषेध हो जाएगा प्रथम न जायते कौन से, न मृियते, न मृियते कौन से नाश का निषेध हो गया, न जायते कर उत्पत्ति का निषेध हो गया। अस्ति के लिए कहना कोई जरूरत नहीं, अयम आत्मा कौन से अति है, अभी है, तो उसकी उत्पत्ति का निषेध हो गया न जायते। अस्थि का निषेध होगा उत्पत्ति होने के बाद जो अस्तित्व उत्पत्ति के बिना होगा। देखो यहाँ छह भाव विकार में क्या अस्थि रूप विकार है, आत्म तत्व में कौन सी कितने विकार इसमें छह में से अस्थि भी नहीं, सदरूप विकार आत्म तत्व में नहीं। सदैव समय इदम अग्र आसित एक में बाद द्वितीयम आत्म तत्व सदरूप है, श्रुति कहती है। किंतु भगवान कहते भी ज्ञम यत्त प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम श्रुणते अनादिमत परम ब्रह्म न सतना, वो सत नहीं है। ब्रह्म को कहते सत नहीं है भगवान कहेंगे। यहां सत रूप अस्थि रूप विकार का निषेध भी आत्म तत्व में। यहां समझ लेना है जन्म के पीछे होने वाले जो अस्तित्व विकार उसका निषेध, जन्म के बाद जो पदार्थ रहता उत्पत्ति के बाद घट रहता है रहेगा वो अस्तित्व का निषेध किया गया। जब पारमार्थिक नित्य है उसका निषेध नहीं हुआ। जायते अस्थि वर्धते, इसलिए अस्थि को द्वितीय में रखना, दो नंबर में रखना। जायते आगे अस्थि, जन्म के बाद जो रहना है नित्य पदार्थ में आएगा, इसलिए अस्थि कह करके उसका निषेध हो जाएगा आत्म तत्व में। जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व, जन्म के पीछे होने वाले अस्तित्व सत्ता आत्म तत्व में है या नहीं है? जन्म के पीछे होने वाले सत्ता आत्म तत्व के क्यों नहीं? क्योंकि इसका जन्म ही नहीं। अस्थि का निषेध हो जाए, जायते अस्थि वर्धते का निषेध कैसे होगा? किसके द्वारा, किस पद के द्वारा वर्धत है? पुराण कह करके वर्धत या निषेध हो गया है? है? क्या कहते हो? अन्यते वर्धत का निषेध किसके द्वारा हुआ? नहीं, पुराण के द्वारा वृद्धि का निषेध वर्धते, जायते अति वर्धते। विपरिणाम का निषेध किसके द्वारा हुआ? न अन्यते, न अन्यते विपरिणाम का निषेध हो गया। और अपक्षय थे, अपक्षय का निषेध किसके द्वारा? शाश्वत कौन सा अपेक्षा नहीं हुई। और नाश का निषेध नाम दिया थी, शरीर का नाश होता है जन्म होता है, शरीर में छह विकार जाए थे, शरीर में जाए थे, शरीर में अस्थि मरने के पहले वर्धते छोटा बड़ा होता है, वर्धत होने के बाद विपरिणाम, विपरिणाम होता है परिणाम होता रहता है, फिर आगे अपक्ष वृद्धावस्थावाद अपक्ष हुआ, जितने खाने पर भी आगे शरीर में पतलापन चलना फिरना मुश्किल है, अपक्ष किसका होता है? शरीर का, किसके शरीर? हाँ सबका अपक्ष, अपक्ष होने के बाद पंचम विकार बनने के होने के बाद क्या रहता है बाकी? विनश्यति। ये शरीर की स्थिति है, किन्तु आत्म तत्व में से छह विकार कुछ नहीं है, इसलिए क्या सिद्ध हुआ? आत्म तत्व अभिक्रिय है। क्या सिद्ध हुआ? आत्म तत्व अभिक्रिय है। अभिक्रियण से क्या सिद्ध हुआ? हनन का कर्ता नहीं होता है और कर्म भी नहीं होगा। श्लोक बोलो, न जायते मिते एक मंत्र के द्वारा कह दिया यैनम वेत्ति हंतारम। एक एक गीत श्लोक में कहा उभूतोन बीजानी, दोनों नहीं जानते आत्म तत्व हनन के कर्ता अथवा हनन के कर्म, ऐसा जो मानते वो दोनों ठीक नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्म तत्व हनन का कर्ता नहीं होता है, हनन का कर्म भी नहीं होता है। और उसमें कारण क्यों, क्या है? क्यों अभिक्रिय है। अभिक्रिय कहने के लिए श्लोक आया न जायते मृत्ये वा, आत्म तत्व तो अभिग्रह है, कह करके अभी उसका उपसंहार करने के आगे कहते हैं वेदा विनाशिनं नित्यं येनम अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकम्। प्रथम पाद में कितने पद है बताओ? तीन है। द्वितीय पद बोलो। ठीक, द्वितीय पाद में कितने पद है? चार। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम नित्यम अविनाशिनम वेद। आत्मतत्व को जो अजन्मा अव्यय नित्य अविनाशी मानता है, जानता है, मानता नहीं जानता है, सब पुरुष हे पार्थ कथम कम घातयति कि कम हंति, कथम कम किम, दो कम आ गया कथम। हे पार्थ सब पुरुष कथम घातयति कथम हंति, कम घातयति कम हंति। जो पुरुष जानता है यह एनम, एनम किसको? आत्मतत्व को। क्या जानता है? अविनाशी, अविनाशीनम, अविनाशी है, विनाश नहीं होता है, नित्य है, जन्म नहीं होता है, अजम व्यय नहीं होता है, अपेक्षा नहीं होता, अव्ययम जन्म नाश आदि विकार रहित आत्मतत्व जो जानता है। हे पार्थ कथम सब पुरुष कम हंती कम घाते थी। पहले हंती का तो मारता है और घाते थी का तो मरवाता है, एक खाता है दूसरे खिलाता है, एक चलता है दूसरे चलाता है, गच्छति गमयति, शिष्य पठति गुरु पाठयति, स खादति और माता खादयति। इसी प्रकार प्रयोग होता है, एक मारता है तो दूसरा मरवाता है, जगह एक मारता है दूसरे मरवाता है, तो हंती मतलब मारता है और घातयति का तो मरवाता है। अब यह आत्मतत्व जब अभिक्रिय है वो हनन का कर्ता नहीं होता है और प्रयोजक भी प्रेरणा देने का कर्ता भी नहीं होता है। अभिक्रिय होने से केवल हनन के लिए नहीं, कोई भी क्रिया नहीं होगा। यहां आत्मतत्व हनन का कर्ता होता है, कर्म होता है, क्यों नहीं होता है, कारण क्या बताओ? हाँ, अभिक्रिय यही कहा, आत्मतत्व अभिक्रिय है। अभिक्रिय किस श्लोक में कहा गया? हाँ, न जायते मिलते श्लोक के द्वारा आत्मतत्व अभिक्रिय कहा। अभिक्रिय क्यों कहा? इसलिए कि आत्मतत्व हनन का कर्म नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है। जो अभिक्रिय के कारण कर्ता कर्म नहीं हुआ हनन का, उसी हेतु से सारे क्रिया का, कोई भी क्रिया का कर्ता कर्म कुछ नहीं होगा, केवल हनन के लिए नहीं। अभिक्रिय होने से कुछ कर सकता है? आत्मतत्व में कर्तृत्व कर्म कोई क्रिया नहीं है, इसलिए कम खाते थे हंती मारेगा मारेगा ये कहां कर सकता है? कथम कैसे मारेगा, किसको मारेगा, किसको मराएगा? यहां जो कथम किम कम शब्द आया, ये प्रश्न नहीं है, ये आक्षेप है। किम शब्द का प्रयोग दोनों प्रकार होता है, कभी तो प्रश्न में और कभी आक्षेप में। हम कथम कुरिया, मैं कैसे करूंगा, मैं क्यों करूंगा, मैं कैसे करूंगा, अर्थात कैसे करूंगा मतलब नहीं करूंगा, मैं कहां से दूंगा, क्योंकि हमको थोड़ा 100 रुपया दे दो, रखा है तो अधिक है, देखा है 100 रुपया दे दो, मैं कहां से दूंगा, और कहां से कहां हाथ में रखो दे दो, अब तो हाथ में पकड़े रखे हो, अरे मैं कहां से दूंगा, मैं कहां से दूंगा, जो कहता है ये पूछता है कहां से इसे दूंगा, इसे हाथ से दूंगा या पकड़ से दूंगा, हाथ से दूंगा पकड़ से, वही पूछता है, मैं नहीं दूंगा, मैं कहां से दूंगा, पकड़ में रखा रुपया, हाथ में रखा रुपया, कोई पूछा हमको 100 रुपया दे दो, ये बोलता है मैं कहां से दूंगा, अर्थात पूछता है, प्रश्न करता है, आक्षेप करता है, डांटता है, मैं नहीं दूंगा। यहां इस प्रकार कथम वो कैसे मारेगा, कैसे मरवाएगा, किसको मारेगा, किसको मरवाएगा, कथम सब पुरुष पार्थ कम घाते थे कम हंती, अर्थात कैसे अपने को कर्ता मानेगा, कैसे कर्म मानेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या पाप कर्म करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, जो कौन, जो आत्मतत्व को अविनाशी नित्य अजन्म मान लिया, जान लिया। आत्मतत्व क्या जान लिया? अजन्मा अविनाशी नित्य ऐसे जान लिया, वो कहां क्या कर सकता है, क्या करेगा? यदि जाना नहीं देह को मैं मानता है तो हम गच्छामि, अहम करोमी मानता है। देह में अहम बुद्धि होने के कारण देह के क्रिया को आत्मा में आरोप करता, मैं अहम गच्छामि, अहम वदामि, अहम करोमि। आत्मा तत्व को समझ लिया, आत्मा में क्रिया क्रिया होती, क्या क्या क्रिया, तो क्या करेगा, मानेगा मैं अहम गच्छामि, मानेगा वदामि कुछ ना, हनमि हनन करता हूं, हनन करेगा, ये भी कैसे मानेगा। भगवान कहते जो जान लेता है वेद अविनाशी आत्म तत्व को समझ लिया, जान लिया, वो जानने के लिए गुरु वाक्य से श्रवण करते करते अंतकरण शुद्ध हो तभी ज्ञान होता है। शब्द से तो मालूम हो गया आत्म तत्व नित्य है, जन्म आदि रहित है, किंतु ऐसे ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो गया मतलब निश्चय हो गया, ये शब्द से तो हुआ, तो भी जब तक अनुभव नहीं किया तब तक निश्चय नहीं होता है। जो जान लेता है कैसे कम घाता है यति किम कम हंती कथम, कैसे मारेगा कैसे, अर्थात आत्म तत्व में कोई क्रिया नहीं है अभिक्रिय होने के कारण, ना करता है ना तो कर्म है ना कुछ भी कर सकता है। श्लोक बोलो। आत्मतत्व अविनाशी है क्या है, उसका विनाश होता है, जिसका विनाश होगा उसको क्या कहेंगे, जिसका विनाश होता है उसको क्या कहेंगे, विनाशी, जिसका विनाश नहीं होता उसको क्या कहेंगे। आत्मतत्व कैसे अविनाशी कहते आगे, वासान से जीर्णानि यथा विहाय, नवा निगृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देखो भगवान कितने सरल दृष्टांत देकर समझाते हैं, ये सब समझ रहे हैं, सब को मालूम है, कपड़ा पहनते कपड़ा फट गया तो फेंक करके नया कपड़ा लाते, मालूम है ना, नहीं सब को मालूम है। जो भीख मांगा वो भी कहता मेरा कपड़ा फट गया मुझे कपड़ा दे दो, कहता ना नहीं, कहता देखिए मेरे कपड़ा फट गया मुझे कपड़ा दे दो, सब जानते, छोटे बच्चा भी कहता है, ये कहते यथा जीर्णानी वासांसी विहाय नरो अपराणी नवानी गृहनाती, वस्त्राणी वस्त्र है, जीर्ण हो गया पुराना हो गया फट गया, उसको छोड़कर विहाय, व्याय का था छोड़ करके, छोड़ करके नरो नवानी अपराणी गृहनाती, दूसरे वस्त्र को ग्रहण करता है, पुराने को लेता है नया नवानी नव वस्त्र ग्रहण करता है, ये तो सबको मालूम है, पुराने कपड़ा फट गया फेंक करके नया कपड़ा ले लेता है, उसको दुख लगता है पुराने कपड़ा फेंक दिया नए कपड़ा ले तो खुश होता है। ठीक इस प्रकार तथा जीर्णानी शरीरानी विहाय, जीर्ण शरीर को छोड़ करके अन्यानी नवानी देही संयाति, नए शरीर को ग्रहण कर लेता है, जाता है ग्रहण कर लेते हैं, यहां रहकर नया शरीर नहीं मंगाता है, यहां तो नया वस्त्र मंगा करके पहन लेता है, यहां शरीर को पर पुराने कपड़े शरीर को छोड़ करके नए शरीर को चल जाता है। तथा शरीरानी जीर्णानी शरीरानी व्याय, जीर्ण शरीर को छोड़ करके वृद्धावस्था होने से जीर्ण होता है, किसी आघात इत्यादि होने के कारण शरीर विषय हो जाता है, वहां रहने लगे नहीं कहीं ये छोड़ कर चल जाता है, छोड़ करके अन्यानी नवानी संयाति, संयाति का कर्ता कौन है, संयाति का कर्ता देही देह वाला, देह नहीं जाता देह वाला, देहदारी देही जीव जाता है, अन्य शरीर को ग्रहण कर लेता है, वो आत्म तत्व वही सूक्ष्म शरीर चल जाता है, तो देही देहवान कर दिया पुरुष, श्लोक बोलो। अभी जो देह अपने पास है, इसके पहले कितने बार सर फेंका, नया सर लिया, पुराने सर फेंक कर नया सर लेने का कितने दिन, कितने बार हो गया, हिसाब नहीं कर सकते अनाधिकार से कितने सर फेंक रहा है। खाली मनुष्य सर लिया क्या, सब प्रकार सर लिया, 84 लाख चक्कर में कोई जोने नहीं जहां भटके नहीं, करोड़ों करोड़ों बार सब ले लिया, सब होने के बाद भी फिर सर को कहते मेरा, मैं ये सर को पकड़ा भी कहते ये मैं मेरा शरीर, ये भी छोड़कर जाना है किन्तु कहते मैं, यही माया अज्ञान नावृतन ज्ञानम तेन मुह्यंती जनता वो, ये अज्ञान के कारण आत्मा अविक्रिय है, कैसे अविक्रिय आगे कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम शस्त्राणि न चिन्तन्ति नैनं कैसे प्रतिशत न एनम, एनम तो इसको आत्मतत्व को आत्मा को शस्त्राणि न चिन्तन्ति, शस्त्र उसको छेदना आत्मतत्व को नहीं करते, एनम पाव को न दहती अग्नि जलाती नहीं, ये तो मालूम है, आकाश को भी अग्नि नहीं जला पाएगी, शस्त्र भी काट नहीं सकते, आत्मा को कौन करेगा काटेगा, न चैनम आप क्ले रहती जल कपड़ा को गीला कर सकता है, बहुत देर से गिरा करता है, जल्दी नहीं डर लगता है, गंदगी में जल से कपड़ा गीले हो जाते, गीले कपड़े को गीला कर सकते हैं किंतु आत्मा तत्व को गीला नहीं कर, अपने जाकर डूबी के लगाओ गंगा जी स्नान करो ठंडी लगती है, सर गीला हो जाता है, आत्मा तत्व गीला हो जाता है, न क्ले दें आपो न मारू तो सोसेती वायु भी उसको सुखाता नहीं है, आत्मतत्व का ना आकाश का भी छेदन भेदन कुछ नहीं होता है, दहन नहीं होता है, गीला नहीं होता है, सुखना नहीं होता है, और आत्मतत्व आकाश का भी नहीं होता है, आत्मतत्व क्या होगा, इसलिए आत्मा क्या सिद्ध होगा, अभिक्रिय। श्लोक बोलो। अछेद्योय मदाह्योय मक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतस्थानो रचलोयं सनातनः। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशस्य एवच, यहां पदच्छेद करके नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नित्य सर्वगत स्थानु अचल यम सनातन, ऐसे पदच्छेद कोई करते हैं वह प्रामाणिक नहीं, क्योंकि स्थानु के आगे आगे अ है, अ पर रहते पहले विसर्ग नहीं होता कहीं, स्थानु रचल यम स्थानु रचल स्थानु आगे अचल शुद्ध होगा, थानु हो अचल अचल एक बार थानु कई पदच्छेद कर करेंगे, जो लोग पदच्छेद करते हैं उनके श्लोक पढ़ाओ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन न चयन क्लेदयन त्यापो, ये नहीं ये नहीं ये श्लोक वासान से जिन्ना श्लोक देखो, तृतीय पाद बोलो तथा नहीं, तृतीय पद में बोला था कर्ण गिरी तृतीय पाद बोलो। चतुर्थ पाद बोलो। न्यन्यानी तो मसंग सत्रण बोलने पर कोई लोग को मजा करते। मसंग सत्रण क्या बोलते हैं? मसंग सत्र क्या है? असंग कहना चाहिए ना, मसंग गलत हो जाता है। ये पूछो उनको, न्यन्यानी संयाति नवानी देई, न्यन्यानी क्या है मालूम है? न्यन्यानी न अन्यानी, न्यन्यानी क्या था? न अन्यानी है? बोलो न्यन्यानी क्या है? न्यन्यानी नहीं है, अन्यानी है। जिन्नानी के नींद आ गया, जिन्ना तक अक्षर पूरा हो गया, जिन्ना क्या जिन्नानी है, वो नी यहां कर न्य बन गया। वहां पदच्छेद करें तो क्या बोलना मैं चाहिए मालूम है? तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयाति नवानी देही, ऐसा बोल सकते हैं ना? तथा शरीरानी विहाय जीर्णानी अन्यानी संयाति बोलेंगे तो क्या होगा? तृतीय पद में एक अक्षर बढ़ जाएगा। नी को यदि तृतीय पद में बोलेंगे एक अक्षर बढ़ जाएगा तो छंद भंग हुआ, ऐसा नहीं बोला जाता है। इसलिए कहीं कहीं कोई बोलते तो अप्रामाणिक है। तथा शरीरानी विहाय जीर्णा न्यन्यानी, इतने क्या भगवान इसे श्लोक नहीं बना सकते कि जो पाद में पूरा हो जाए? न्यन्यानी बोलना पड़ेगा। यहां जीर्णानी बोल करके अन्यानी पदच्छेद नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी अच्छेद्यो यदा यो यकले दो सच नित्य सर्वगत स्थानु आगे रचल अयम सनातन, रस बोलना पड़ेगा, अचल नहीं है। अयम अच्छेद्य आत्म तत्व अच्छेद्य, जिसका छेदन हो सकता है उसको क्या कहेंगे? छेद्य, न छेद्य अच्छेद्य। आत्मा अच्छेद्य है, छेद्य है, आत्मा छेद्य है, न छेद्य इति अच्छेद्य। अयम अयम मतलब आत्मा, दाह्य होगा काष्ठम दाह्यम भवती, काष्ठ है दाह्य, आत्मा दाह्य है तो फिर क्या है? अदाह्य, दहन योग्य नहीं। और गीला होगा कपड़ा नहीं, कोई कहते क्लेद्य न क्लेद्य इति अक्लेद्य, अक्लेद्य कौन है? आत्मा। अब पट क्लेद्य अक्लेद्य, पट क्लेद्य आत्मा अक्लेद्य। गीला कपड़ा रखो तो सूख जाता है, शोष्य होता है, आत्मा शोष्य है, क्या है? अशोष्य। देखो अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य, ये चार में से आत्मा कौन है? अच्छेद्यो यम अदाह्यो अयम, अयम में अवकाश में मिल गया, बोलते समय मिलाकर बोलना होता है। शोष्य वच नित्य, आत्मा नित्य है और देह के अंदर है बाहर है? सर्वगत, आपके आत्मा सर्वगत या परमात्मा सर्वगत? एक ही है, दो नहीं होगा सर्वगत। ये सर्वगत आत्मा तत्व तो ही सर्वगत है। और ये आत्मा किस आत्मा के लिए चल रहा है मालूम है? यहां परमात्मा के लिए नहीं चल रहा है, क्योंकि अर्जुन मानता है कि मैं मारूंगा ये मर जाएंगे। जीवात्मा के लिए विचार चल रहा है, ये आत्मा उत्पत्ति नाश वाला नहीं, नित्य है। प्रत्येक आत्मा जीवात्मा के लिए कह रहा है, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा के तो पहले तो नायम का सर न चाहे भविष्य में सर्वे वय मत परम ये तो अलग आया, किन्तु यहां जो आया आत्म तत्व का हनन नहीं होता है, हनन करता नहीं, अभिक्रेत हो जीवात्मा के लिए। नित्य है और सर्वगत है, प्रत्येक आत्मा सर्वगत है। कोई कोई आत्मा को अनुपरिमाण मान करते, आत्मा कितने बड़ा है? अनुपरिमाण। शास्त्र में क्या है? अनुरणिया, अणु से भी अणुतर है, छोटे से और छोटा है। जहां अनुरणिया ऐसो अनुरात्मा चेत सावेदितव्य, आत्मा का बहुत छोटा है। सीता सेतु उपनिषद आया बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सभी ज्ञेय। बाला के अग्र अग्र थोड़े उसका सौ भाग करो, एक सौ भाग करने पर फिर एक भाग को और सौ भाग करो, मतलब अत्यंत सूक्ष्म है। एक बाल के अग्र को शोभा करना फिर एक भाग को शोभा करना, ये तो केवल बुद्धि से विचार करना कोई नहीं कर सकता है। अत्यंत सूक्ष्म कहा, ऐसा सूक्ष्म कहने से कुछ लोग कहते हैं आत्मतत्व तो परमाणु रूप छोटा है। जहां अनुरणियान कहा गया उसके आगे क्या कहा गया मालूम है, उसके आगे महत्वमयान, छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा है। तो छोटा से छोटा को ले लिया और महत्वमयान को छोड़ दिया, क्योंकि अपने दुराग्रह के आत्मा को अणु कहना, अणु नहीं अणु कहा तो सूक्ष्म, जैसे आकाश को भी सूक्ष्म कहा। भगवान कहे, भगवान कहेंगे यथा सर्वगतम सूक्ष्मयाद आकाशम नोपलिप्यते, आकाश को सर्वगत कहते भगवान, यथा सर्वगतम सूक्ष्मयाद आकाशम, आकाश सर्वगत है ना, नहीं उसको सूक्ष्म कहते हैं नहीं, तो सर्वगत का आकाश अरुपरिमाण नहीं अनुपरिमाण, सर्वगत आकाश को भगवान अनुपरिमाण कहते हैं, सूक्ष्म का क्या अर्थ है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं, उसको नहीं ले सकते, देख सकते, काट सकते, तोड़ सकते, ये सूक्ष्म कहा। सूक्ष्म का अर्थ नहीं सर्वगत कहते और सूक्ष्म भी कहते, इसी प्रकार आत्मतत्व सूक्ष्म कहने के लिए अणु कह दिया अणुरणियान। वस्तु तो आत्मतत्व क्या है, सर्वगत अविनाशी तत्व विधि ये न सर्वमिदम तथम, आत्मतत्व सर्वगत है। और स्थानु, थानु कहा था स्थिर, इधर उधर होने वाला नहीं है, आप दौड़ो भागो कुछ करो आत्मतत्व स्थिर है। आप दौड़ते समय आत्मा आपके अंदर भागता है ना, पीछे पीछे दौड़ता है, अब भागते समय आत्मतत्व साथ नहीं जाता है, नहीं जाता है, आत्मतत्व सर्वत्र है। शरीर दौड़ता है, घड़ा लेकर चलो पानी लेकर चलेंगे, चंद्र का प्रतिम्ब जहां जाओ तो प्रतिम्ब दिखेगा, आत्मतत्व सर्वत्र है। शरीर जाता है, अंतकरण भी जाता है, चेतन सर्वत्र है, उसका प्रतिम्ब चिदाभास होता है, जहां जाओ लगता है कि मैं जाता है, कौन आत्मा जाता है, शरीर जाएगा उसके अंदर अंतकरण जाएगा, जहां गया वहां चिदाभास वही चेतन लगता है जाता है, ये स्थिर है। स्थानु इसलिए अचल है, चलन वर्जित तो, कोई चलन नहीं, और सनातन है सदा रहने वाला। यहां इस श्लोक में एक बार कह दिया न जायते मृियते कह देने से सारे विकार का निषेध हो गया, फिर बार बार वही कहते, कितने बार नित्य कह दिया, कितने बार जन्म नहीं होता है, ये सब इतने बार बार क्यों कहते, ये नहीं आया नित्य अजन्म कह दिया तो न जाए थे, न जाए तो कहते फिर अजन्मा ही कहते, फिर यह नित्य, पहले नित्य नहीं कहा गया था फिर यह नित्य कहते। यहां भगवान भाष्यकार कहते हैं ये जो श्लोक में बार बार कहते करके पुनरावृत्ति दोष नहीं देना है, एक श्लोक के द्वारा आत्मा का जो नित्य अभिक्रय सिद्ध हो गया तो फिर न जाए थे मृत इत्यादि कह करके और कितने बार बार क्यों को कहते। भगवान भाष्यकार कहते यहां नहीं, ये सारा ग्रंथ में सारे शास्त्र में उसी को ही कहते हैं, और क्या कहेंगे, कहीं तो शब्द बुरा बुरा वही है, कहीं अर्थ तो वही है। आत्मा नित्य है, सत्य है, पारमार्थिक है, बाकी अनित्य है, इसको प्रतिपादन करने के लिए सारे गीता शास्त्र, सारे शास्त्र, सारे वेद, सब कुछ पुनरावृत्ति क्या है, उसी को ज्ञान कराने के लिए बार 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 कहते हैं। जो हित होता है उसको बार बार बच्चे को माता कहती, बार बार हित उसको उपदेश करते हैं। भगवान श्रुति इस प्रकार माता से बढ़कर हित का चाहने वाली श्रुति उसी तत्व को बार 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 कहती, किसी प्रकार ग्रहण कर ले। बच्चे को सिखाने के लिए कितने बार बार कहते, थकते नहीं माता, थकती बोल कहते 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 कभी मान ले। श्रुति इस प्रकार बार बार कहती है, इसे भगवान कहते कहीं तो शब्द से पुनरुति, कहीं अर्थ से, जो अर्थ कहा उसी अर्थ को कहीं अन्य शब्द से, विभिन्न प्रकार आख्यायिका करते करते अंत में वही कथन करना है। इसे पुनरुति की शंका नहीं करनी, बार बार ऐसा निश्चय हो जाए, दृढ़ हो जाए। अचल सनातन श्लोक बोलो, अच्छे द्यो य मदा यो य
अव्यक्तो यमचिन्त्यो य
अव्यक्तो य मचिन्त्यो य मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अव्यक्तो अयम अयम आत्मा अव्यक्त जो इंद्र के द्वारा ग्रहण होता है प्रकट हो जाता है उसको व्यक्त कहते हैं और अव्यक्त होता है अस्पष्ट व्यक्त नहीं होता है चक्षुराधिकरण का विषय नहीं। चक्षुरादि इंद्रिय का विषय हो तो उसको क्या कहा जाएगा व्यक्त और नहीं दिखता है तो अव्यक्त। आत्म तत्व का ग्रहण किस इंद्रिय से होता है किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होने से इसको अव्यक्त कहा। अच्छा जिस जो व्यक्त होता दिखता है इसको पुष्प को देखा और देखने के बाद फिर उसका चिंतन करते हैं चिंतन कर सकते ना नहीं देखा देखने के बाद जैसे देखा ऐसा चिंतन करते हैं। इसके बाद पुष्प नहीं देखने पर भी मन में रह गया किस तैसा रूप कैसे आकार चिंतन करते हैं। जिसकी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं होती है अव्यक्त है उसका क्या चिंतन करोगे जिसको देखा तो उसको चिंतन करते हैं जिसको नहीं देखा क्या चिंतन करेगी इसे अचिंत्य अव्यक्तोयम इसलिए क्या हुआ अचिंत्योयम अचिंत्य। उसमें कोई विकार नहीं होता है आत्म तत्व में क्या विकार होता है अविकार्यो अयम उचित अविकार्य। जिसमें विकार होगा उसको क्या कहेंगे विकार्य जिसमें विकार नहीं होता वो अविकार्य अभिक्रिय भी कहते अविकार्य उचित। तस्माद एवं विदित्वा ऐसा समझ करके एनम नानुशोचित अर्हसि इसके पीछे शोक नहीं करो आत्म तत्व का हनन नहीं होता है ना तुम हनन करोगे ना कोई हनन करेगा किसका हनन कभी होता है नहीं अविकारी है अचिंत्य है अव्यक्त है नित्य है सर्वगत स्थान बता दिया उसका कुछ बिगड़ता नहीं कुछ होता नहीं इसे इसके पीछे शोक नहीं करो। अर्जुन क्या शोक करा था ये मर जाएंगे मेरे भाई बंधु सब है पिता पितामह ससुर आदि सब है गुरु आदि है मैं मारूंगा ये जो सत्य हो एवं विदित्वा इसे समझ करके एनम आत्म तत्व न अनुसूचित अर्हसि अर्हसि अर्ह धातु है अर् पुजार हऊ पुजार हा वरिशोधन आया था पुजार हऊ का क्या अर्थ है पूजा के लायक पूजा के योग्य अर्हसिया योग्य नहीं हो ऐसा शोक करने के लिए नहीं चाहिए योग्य नहीं तुम शोक करने के लिए ये इसे आत्म तत्व के संबंध से शोक करने योग्य नहीं है। आत्म तत्व के लिए शोक नहीं करना आत्म तत्व का नाश होता है अपने आत्म तत्व का क्या करना है ये विचार करो आप अपने आत्म तत्व का क्या करना है शोधन करना है या कहां लेकर पहुंचाना है या कुछ मैला हटाना आत्म तत्व शुद्ध है उसमें कुछ बिगड़ा है कुछ नहीं बिगड़ा कुछ सुधार करना कुछ नहीं आत्म तत्व शुद्ध है अत्यंत शुद्ध है। रज्जु में सर्प कल्पना करके दौड़ कर भागो तो भी रज्जु तो रज्जु है कुछ नहीं हुआ आत्म तत्व में कुछ होता नहीं अच्युत है शुद्ध है देहादि सब है देह इंद्रिय मन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि है वो अज्ञान के कारण अंतकरण में आत्म तत्व का प्रतिबिंब हुआ जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है जल में प्रतिबिंब होता है अंतकरण आत्मा का प्रतिबिंब हो गया उसको क्या कहते हैं चिदाभास। वही कि चिदाभास आ जाने से अंतकरण चेतन जैसे लगता है क्योंकि आत्म तत्व का तो अव्यक्त होने से ज्ञान नहीं होता है वो चिदाभास को आत्मा मान करके आगे देहादि में अहम बुद्धि करके इसमें करना क्या है आत्म तत्व को कुछ बिगड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा तो चंद्र का प्रतिबिंब घड़ा में जल में आ जाएगा तो चंद्र का क्या बिगड़ जाएगा घड़ा को तोड़ देंगे तो चंद्र रहेगा प्रतिबिंब के नाश हो जाएगा तो प्रतिबिंब में कुछ हो जाए बिंब में कुछ बिगड़ा नहीं इसी प्रकार आपके आत्म तत्व में ना कोई बिगड़ा हुआ ना कोई सुधार करना है। जो प्रतिबिंब देह अंतकरण आदि जिसमें आप नहीं होने पर भी अहम बुद्धि कर बैठे इसमें अहम बुद्धि को छोड़ना बिंब रूपक मैं जानना प्रतिबिंब मैं नहीं हूं, ये समझने के लिए आत्मतत्व के विषय में चिंतन बार बार करना पड़ता है। जो अनात्मा देहादि में अहमभूति छोड़ने के लिए इसमें अनात्मत्व निश्चय करना है, पहले स्थूल शरीर अनात्मा है कैसे बना, इसलिए स्थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो इंद्रिय क्या है मन क्या है ये सब इसे कि छोटा सा जगत गुरु भगवत पाद के द्वारा रचित तत्वबोध बहुत छोटा है, वेदांत के मूल पुंज उसमें आ गया, वो दिमाग हमेशा रहना चाहिए। इसे समझे कि सूक्ष्म शरीर क्या है इंद्रिय क्या है भूत भौतिक सब है, इसको समझ करके समझते समझते यही आत्मा के लिए क्या शोकन आत्मा का हनन होता है नहीं, इसलिए जो अपने धर्म त्याग करके परधर्म करने के तैयार हो जाता था अर्जुन, भगवान कहते तुम अपने धर्म पर चलो, ये आत्म तत्व का नाश नहीं होता है, इसे न अनुसोचित मरत इनके इसलिए सोचना शो करना उचित नहीं है, यही से सर्वता होता असोचान अनुसोचस्तम प्रज्ञा बाधा से ये शोचनीय नहीं है, भीष्म द्रोणादि सदाचारी है इसलिए शो करने के लिए योग्य नहीं, और परमार्थ रूप से आत्मा नित्य है इसलिए भी शो करने के लिए योग्य नहीं। श्लोक बोलो अव्यक्तो या इसके पीछे शोक नहीं करना क्यों, दो हेतु बताया, जो भीष्म द्रोणादि सदाचारी है सन्मार्ग में चलते उनके लिए शोक नहीं करने का है, और आत्मतत्व नित्य है पारमार्थिक उसके लिए शोक करना नहीं। अभी आत्मतत्व नित्य कहने के बाद भी ये नित्य तो बुद्धि नहीं होती है, अनित्य तो बुद्धि है मैं मर जाऊंगा पहले नहीं था वो अमुक मर गया, यदि अनित्य मान तो भी क्या करना, तो कह चलो अनित्य मान करके भी विचार करो क्या करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथच मतलब आत्मतत्व नित्य है जन्मवरण नहीं, फिर भी जब तुम इसे मानते हो ऐसा यदि मानो तो भी क्या मानो नित्य जातम नित्य व अमृतम अन्य से, यदि आत्मतत्व जन्म होता है नष्ट होता है ऐसे मानते हो, हमेशा आत्मतत्व का जन्म होता है और मृतम नाश होता है मानते हो तो भी क्या करना है, तथापि ऐसा मानने पर भी आत्मतत्व नित्यम जातम हमेशा जन्म होता है, हमेशा मतलब प्रतिक्षण नहीं जन्म होता रहता है मरता है ऐसे मानते हो, हे महाबाहु तथापि तुम एवं सोचित नार्हसि फिर भी शोक नहीं करना चाहिए, नित्य होने के कारण शोक करना चाहिए या नहीं, अनित्य हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए, ये अनित्य मानो तो भी अनित्य तो है ही नहीं, तो भी यदि आप अनित्य मानते तो भी समझो कोई बात नहीं, तो भी इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, कहीं शोक नहीं करना चाहिए कहेंगे नित्य हो तो शोक तो नहीं करना और अनित्य हो तो भी शोक करना नहीं, शोक नहीं करके क्या करना अपना धर्म पालन करना, शोक सागर डूब करके अर्जुन क्या कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्षेत्र का धर्म है युद्ध नहीं करना, क्षेत्र का धर्म तो युद्ध करना, वो जो धर्म त्याग करता है कहते इस समान करके अपने धर्म त्याग नहीं करना, मुख्य ये जो अपना कर्तव्य अपना धर्म है उसका त्याग नहीं करना है, सन्मार्ग में चलते जो वर्णाश्रम धर्म वर्ण के धर्म नहीं कर पाते सब सब ठीक नहीं करते, किंतु जो भजन साधना करते अपने कर्तव्य पालन करते उसका त्याग नहीं करना, शास्त्रीय कर्तव्य जो शास्त्रीय कर्तव्य शास्त्र सम्मत सत्कर्म सन्मार्ग में चलते उसको छोड़ना नहीं, शोक के कारण दुखी होकर के क्रोध के कारण अपने मार्ग छोड़कर इधर उधर जाते हैं वो नहीं करना चाहिए, यही मुख्य है। और ये अनित्य माने जन्म मरण वाला माने तो भी शोक क्यों नहीं करेंगे आगे बताते, इस लोग को बोल दिया। अथ चैनम नैवम शोचितुमर्हसि, शोचि तो नहीं करना, नैवम शोचितुमर्हसि बोलो। अथ चैनम, अथ चैनम जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अभी भगवान क्या कहते हैं, आत्मा का जन्म मरण होता है मानो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही कहते अस्मात, क्योंकि जातस्य मृत्यु ध्रुव, जो जन्म हुआ मरण अवश्य भावी है, और मृतस्य च जन्म ध्रुवम, जो मर जाता है उसका जन्म भी अवश्य भावी। यदि जन्म हुआ तो मरण होगा, और मर गया तो जन्म होगा, तो मरण का कोई वारण कर सकता है, जन्म है तो मरण अवश्य होगा, और मर जाएगा तो फिर जन्म होगा, तो अवश्य भावी है। अवश्य भावी जो है उसका प्रतिकार कर सकते हैं, नहीं करने से फिर व्यर्थ है। जिसका परिहार किया जा सकता है, जिसका त्याग कर सकते हैं, उसके लिए शोक करो, त्याग करने के लिए प्रयास करो। सामान्य रोग हुआ दवाई देने से ठीक होता, दवाई ले लो कोई बात नहीं, भूख रहती भोजन करने से तृतीय भूख किदा निवृत्ति के लिए खा लिया ठीक है, किंतु मरण को कोई टाल देगा, मरण नहीं, मरण नहीं हो कभी कर सकते, मरण का होगा तो उसे अवश्य भावी है, तो उसके लिए शोक क्यों करना, अपने कर्तव्य पालन करो। जो अवश्य भावी नहीं, जिसका जिसको टाल सकते उसके लिए प्रयास करो, शोक करो। तस्माद अपरिहार्य अर्थ, जिसका परिहार किया जा सकता उसको क्या कहेंगे, परिहार्य, क्या कहेंगे, परिहार मतलब त्याग, हृदय धातु से हार्य बन जाएगा, परि लगाए तो परिहार्य, क्रिय धातु से कहे तो कार्यम, जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्यम, धारण किया जा सकता है तो क्या करेंगे, धार्यम, परिहार किया जा सकता है तो परिहार्यम, न परिहार्य अपरिहार्य, जिसका परिहार नहीं किया जा सकता है, त्याग नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, किसका जन्म मरण, मरण का टाल नहीं सकते, मर गया तो जन्म होगा, अपरिहार्य अर्थ है, तुम सोचित ना रहते, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका परिहार नहीं हो सकता अवश्य भावी है, क्यों शोक करना। यह आता है एक है, जो आपके कर्म प्रारब्ध में उसको भोगना पड़ेगा, उसका परिहार अवश्य भावी भावाना प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुखे न लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्य भावी भावाना, जो अवश्य भावी है पदार्थ, उनका यदि प्रतिकार हो सकता, प्रतिकार यदि भवेद तदा दुखे न लिप्येरन नल रामचंद्र भगवान युधिष्ठिर, इनको दुख भोगना पड़ा, यदि उसका प्रतिकार हो सकता तो इनको दुख नहीं भोगना चाहिए था, नहीं भोग सकते न दुखे युधिष्ठिर, उनके साथ भीम अर्जुन आदि है, भगवान श्री कृष्ण भी सखा है, ऐसा होने पर ही उनको दुख भोगना पड़ा, भगवान रामचंद्र भी स्वयं वनवास करना पड़ा, सीता विलाप में कितने वनवास, तो वनवास खाली शब्द से वनवास कह देते, जाकर देखो वनवास करके, दो महीना पांच दस दिन सात दिन देखो वन में जाकर के, एक एक वहां क्या खाना है, क्या भोजन आदि मिल जाए तो भी वन में जाकर रहो, भोजन जाए तो हम वहां कहीं इस थाल में है इतने ऐसे मच्छर कीड़े, तो यहाँ के मच्छर से वहां के मच्छर और प्रबल है और बिच्छू सर्प आदि के तो और क्या है, तो कैसे धोखा भोगना पड़ा, अवश्य भावी भावना प्रतिकार भवे यदि तथा दुखे न लिप्यरण दुख से लिप्ता नहीं होते न रामी दृश्य उनको दुख भोगना पड़ा। इतने दुख आप लोग किसको दुख भोगना पड़ता है बताओ, इतने दुख मिलता है कुछ नहीं, उनके हिसाब से क्या दुख हो, कुछ नहीं। कहते हमें बड़े दुख है, हम बड़े दुखी भगवान का भजन छोड़ करके कितने दुखी। द्रौपदी को कुंती को कोई दुख भोगना पड़ा, जगत जननी सीता जी को दुख भोगना पड़ा, रामचंद्र को नहीं भोगना पड़ा, ना कौशल्य को दुख भोगना नहीं पड़ा, कौशल्य को दुख भोगना पड़ा, पुत्र चले गए, पति का भी होगा, कितने दुखी है, सब दुखी है, जन्म है तो इसलिए यह जन्म मरण के लिए दुख करना नहीं चाहिए, उसका परिहार नहीं हो सकता है, कोई परिहार नहीं कर सकता है, इसलिए शोक नहीं करना है। अर्थात अपने कर्तव्य चलने में चलना है, सन्मार्ग में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। श्लोक बोलो। ये मृत्यु शब्द आने के साथ सब लोग डर कर जाते हैं, इसे शोक भी नहीं बोलते। श्लोक जोर से बोलो, डरने क्यों, बोलो श्लोक। जातस्य हि और कहेंगे ये जन्म मरण तो होता है, शोक नहीं करेंगे। ये जो सर्व इंद्र समुदाय संघात दिखता है, अभी दिखता है वो नष्ट हो गया तो नहीं दिखेगा। शोक करते जैसे अपने भाई बंधु कोई है वो देखते थे, पिता माता कोई बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, बहुत बूढ़े होने पर मर जाए तो सर्व फिर समाप्त हो गया, आगे उनको देख नहीं सकते तो फिर दुख लगता है, तो क्यों होता है ना, नहीं जितने बूढ़े हो गए लोग तो भी तुम दर्शन देखते थे, अभी वो देखना नहीं होगा तो उसके लिए तो दुख होता होना चाहिए। कहते वो कहते उसके लिए जो शरीर के लिए सोच करके दुख करते हो वो भी ठीक नहीं है। भगवान कहते शरीर को सोच करके शो करते हो वो भी ठीक नहीं, क्यों नहीं। अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे प्राणी के शरीर उत्पन्न जन्म के पहले कैसे था, व्यक्त था, अव्यक्त था, जन्मे पर अव्यक्त था, अब बीच में व्यक्त हो गया दिखने लगा, आगे मर जाने पर अव्यक्त हो जाए, पहले अव्यक्त था आगे अव्यक्त हो जाएंगे, बीच में थोड़ा दिखने लगा, पहले अव्यक्त था ना नहीं, कितने दिन से अव्यक्त, पहले थोड़े बीच में आ गया, थोड़ी देर में गया, अब थोड़े समय में अच्छा, कोई एक साल दो साल दस साल सौ साल, सौ साल से अधिक कितने होता है, कुछ नहीं। जल बुद्ध बुद्ध होते ना, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ उत्पन्न नष्ट हुआ, कोई जल्दी नष्ट हुआ कोई थोड़ी देर हो गया, इसी प्रकार शरीर कभी अधिक रह गया कभी रह गया, तो जल से निकला जल में विलीन हो गया, अव्यक्त तो पहले था बीच में दिखने लगा फिर बाद चला गया। स्वप्न देखते हैं कितने क्या दिखते, जगने का तो नहीं रहा, तो पहले अव्यक्त था बीच में व्यक्त हो गया फिर आगे अव्यक्त निधरानी, अव्यक्तम निधन हो गया था, निधन के बाद अव्यक्त हो गई, तत्र का परिदेवना, परिदेवना क्या था शोक, उसमें क्या शोक करना, जो पहले नहीं था थोड़े दिखने लगा ये माध्यमिक का भी सब जाने वाला है तो उसमें क्या शोक करना, पहले क्या था व्यक्त था क्या, अव्यक्त था, आगे कहां जाएगा अव्यक्त हो जाएगा, तो बीच में थोड़े दिखा तो उसके लिए क्यों शोक करना, ये अदर्शन से आया पूरा अदर्शन गया, ये शोक महाभारत माता है, अदर्शनाद आपतित पुनः आदर्शनम गत नाशो तव न सत न तस्यतम वृथा का परिदेवना। अदर्शन से आया फिर अदर्शन को चला गया, ना तो वह तुम्हारा है ना तुम उसका हो, पहले जो नहीं था अभी आ गया, अदर्शन से आया फिर चला गया तो कहां गया, अदर्शन हो गया, जो अदर्शन से आया नहीं था आपका वो आपका है क्या, ना तुम उसका हो, वो आपका नहीं वह भी आपका नहीं, किसके लिए शोक करना है, कहीं था पता नहीं, इस जन्म में जो पुत्र भाई बंधु है अगले जन्म में वही पुत्र भाई बंधु होंगे, इसी जन्म में जो शत्रु है पूरे जन्म में आपके कोई भाई बंधु पुत्र पिता थे, हो सकता है नहीं? हाँ, केवल कितने जितने कोई अभी जो मनुष्य है, कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कौन क्या था, आगे भी कौन कहाँ जाएगा? फिर एक साथ मिलना है कभी? फिर एक साथ मिल करके भाई बंधु हम बेतन जन्म पहले था वहां मुंबई में रहते थे, इसे विचार करना है या? कुछ नहीं, कोई कहाँ गया कोई कहाँ गया, गया तो गया। वो आपका कौन है, आप किसका है? महाभारत में आया था नासु तव न तस्य तुम, व्यर्थ क्यों से कुछ करना है? श्लोक बोलो। अव्यक्ता दीनि ये आत्मतत्व नित्य होने पर भी, सर्वव्यापक होने पर भी, पारमार्थिक सत्य होने पर भी वो दिखता नहीं, ज्ञान जानने में नहीं आता है। और जितने पदार्थ दिखते जानने में आते सब मिथ्या है, श्रुति कहते नेह नानाति किंचन, ब्रह्म सब को मिथ्या, नित्य नित्य के सब का निषेध करते। तो जो प्रसिद्ध है आत्मतत्व व्यापक है सर्वत्र है वो क्यों नहीं दिखता है? और जो पदार्थ नहीं वो कहां से आकर भी क्यों दिखता है? कहते यही तत्व ही है, विशेष है आत्मतत्व तो दुर्विज्ञ है, अपने स्वरूप होकर के स्वयं अपने होकर के भी दुर्विज्ञ, अपना स्वरूप स्वयं है वो ढूंढता है कहां मिलेगा, किसको देखना चाहता है, किसको? जो परमात्मा को देखना चाहता है, परमात्मा आपके स्वरूप ही, अपना स्वरूप को देखना चाहता है, दिखेगा अपना स्वरूप कभी? जो दिखेगा अपने से भिन्न दिखेगा, जो आप अपना स्वरूप उसको हम देखना चाहते हैं, जो दिखता है वो अपने से भिन्न है, और जो अपने से भिन्न है आत्मा से भिन्न है अनात्मा है, और जो अनात्मा है वो मिथ्या है। हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने स्वरूप को देखना चाहते हैं, मतलब अपने आत्मा को अनात्मा बनना चाहते हैं। आत्मा को क्या बनाना चाहते? दृश्य बनाना चाहते हैं। जो दृग रूप चेतन वो कभी भी दृश्य नहीं होता है। भगवान कहते क्या तुमको क्या दोष दूंगा, ये आत्मतत्व तो ऐसे ही दुर्भिज्ञ जानने वाले कोई एक होता है, इसे तुम्हारा किसी का कोई दोष नहीं, आत्मतत्व कैसे दुर्भिज्ञ कहते हैं? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वापीनं वेदन चैव कश्चित्। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम्, कश्चित् एनम् आश्चर्यवत पश्यति, कश्चित् कोई बहुत नहीं कोई, एन आत्मको आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य विद्यम आश्चर्य तुल्य बिल्कुल जानने वाले में, क्योंकि अद्भुत कहां से देखे, और जानने वाले कोई माने कि में कोई एक होता है वो आश्चर्यवत कोई होता है। सबके सामर्थ्य होने पर भी कोई जान सकता है, क्यों जानता है, क्या सामर्थ्य है, आपके जन्म के पहले कितने हजार जन्म का क्या पुण्य है आपको मालूम है? पाप पुण्य कुछ मालूम नहीं है। किसी के सामर्थ्य क्या है, कितने पुण्य जिसका बहुत विशेष हो रहता है, कभी समय होने पर पुण्य जो फल देने लगता है बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वही कहते परमात्मा कृपा कर देते तो चाबी घुमा देते, मुंह कम करो ती वाचालम, जब अंतर्यामी चाबी घुमा देते हैं तो दस रत्नाकर वाल्मीकि महर्षि बन गए। कोई भी अपिचेत शुद्र आचार्य भजते मां अनन्य भगवान कहेंगे, जब अंतर है पुण्य फल देने लग जाए तो कभी शीघ्र ज्ञान हो जाता है। तो आश्चर्यवत कोई छोटा बड़ा नहीं समझना, कोई जाति से हो, ज्ञान से हो, उम्र से हो, धन से हो, कुछ छोटा बड़ा कुछ नहीं। कोई भी थोड़ा यदि उसका पुण्य पाप किसका कुछ दिखता है, दिखता नहीं। ऐसा कुछ जिसका पुण्य है वो किसको यदि परमात्मा की कृपा हो गई वो इतने जल्दी आगे बढ़ जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अनेक में से कोई आश्चर्य तो होता है कश्चित एनम, और जानने वाले ज्ञानी तो आश्चर्य वाले कोई होते है, इसको बोलने वाले भी आश्चर्य बदती तथे वो चान्य। अनेक में से कोई आश्चर्यवत कोई बदती, कहने वाले बहुत कहते हैं ठीक है। ज्ञान जिसको ज्ञान हुआ जो साक्षात्कार करता उसके कहना और बाकी सुनकर कहना में कोई अंतर फर्क है। किसी मंदिर के दर्शन करने के लिए गए, मंदिर दर्शन करके आए, उसके बारे में आप बताते हैं और सुनकर के भी बताता है, आप भी सुनकर बताते हैं। नहीं दर्शन जब तो दर्शन नहीं किया, सुनकर बताते हैं। कोई जाकर दर्शन कराया, एक तो सुन सुनकर बहुत सुंदर भाषा से बोलता है और एक सामान्य व्यक्ति गया बोल नहीं पाता है फिर भी दर्शन कर गया, आप किसकी बात सुनोगे? जो सामान्य व्यक्ति है ज्यादा नहीं बोल पाता है किंतु देख कर आया वो सुनना, उसके पास बैठ के पूछे क्या देखा कैसे बताओ। कोई चीज खाद्य आपने खाया उसके बारे में आप बताओ, और नहीं खाया कोई सोचकर बोलता है उसके बारे में बताओ, और सुनते हैं कि स्वयं खाते हैं तो पता चलता है क्या बोल रहे। आत्मतत्व के विषय में ऐसे ही आश्चर्य में तो कोई ठीक नहीं बोलता है, नहीं तो बोलने वाले में भी बहुत भ्रांत है, और जो भ्रांत होते हो भ्रामक भी होते हैं, भ्रांति में डाल देते हैं। एक शब्द आपको मालूम है मूला विद्या, मूला विद्या, मूला विद्या क्या है? मूला आगे क्या है? अविद्या है विद्या। हाँ, ये कोई ऐसे भी वक्ता हो सकते हैं कि मूला विद्या कहते मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ज्ञान का नाम मूला विद्या, जो ब्रह्म ज्ञान है मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान मूला विद्या है, अरे मैं जीव हूं ये ज्ञान को तुला विद्या कहते हैं। कोई कहा कोई विशेष स्थान पर कोई विशेष वक्ता ऐसा भी कहा है, उनका विरोध किया गया, कोई कहा महाराज जी ऐसा तो नहीं है, मूला विद्या तो ऐसा नहीं, मूला विद्या नहीं, मूला अविद्या, वो क्या है अविद्या प्रतिषेध नहीं करके मूला आगे विद्या, मूला विद्या ना मूला और विद्या, मूला विद्या मतलब मुख्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो जाए ना, मूला विद्या कौन मूल ज्ञान कौन है ब्रह्म ज्ञान, और तुला विद्या मतलब मैं जीव हो ज्ञान, ऐसे कथन करने वाले भी बड़े ऐसे ऐसे। और कोई कहने के बाद यहां ही कोई कहा नाम अभी नहीं कहते हैं, अभी भी है आते हैं कहते हैं ऐसे कोई बोलता, और कोई जाकर उनको कहा फिर कहते तुम शब्द को पकड़ तो तुम जो बोलते मैं वही बोलता हूं, वही तो मैं बोलता हूं। क्या ब्रह्म ज्ञान को मूला विद्या कहते हैं? वो जाकर कोई बताए ये तो मूला विद्या था माया अविद्या है, ब्रह्म के अज्ञान को मूला विद्या कहेंगे, और तुला विद्या है रज्जु आदि वो नहीं, ओ वही चीज अगर वही स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वेदांत के वक्ता है वो भी ऐसा अर्थ कर सकते हैं, बता सकते, बताने वाले में भी ऐसे बहुत बहुत कुछ है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान क्या पदार्थ है, नित्य है अनित्य है, उसके ऊपर स्पष्टीकरण करने वाले बहुत कम होते हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है? अनित्य है, नित्य है जो अज्ञान का निवर्तक, अज्ञान अनादिकाल से अज्ञान है, उसको निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। वो अनित्य ब्रह्म ज्ञान उसके निवृत्ति कर देगा या नित्य निवृत्ति करेगा? जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान वो अनित्य है, बोलो अनित्य है अनित्य है? कितने लोग कहते हैं अनित्य होकर कैसे अनादि को नष्ट करेगा? अनादिकाल से अज्ञान है और अनित्य ज्ञान उसको नष्ट कर देगा? ठीक दिला कर कर ना, अनित्य है नित्य नहीं, नित्य ज्ञान कोई है? नित्य ज्ञान कोई है नहीं है? सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वो नित्य है, नित्य है ना नहीं? नित्य ज्ञान कोई है नहीं? वो अज्ञान का निवर्तक है नहीं? हाँ? बोलो नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं? ये कहते ये लोग नित्य ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं और अनित्य ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। कोई बलवान तो युद्ध नहीं कर सकता, वंध्या पुत्र युद्ध करेगा। ये है पहले बताया है बहुत बार, ये तो बहुत पुराने हो गए। नित्य ज्ञान ब्रह्म रूप ज्ञान अज्ञान का भाषक प्रकाशक आश्रय, अज्ञान है ब्रह्म में, वह अज्ञान का निवर्तक नहीं है। अज्ञान का निवर्तक जो ब्रह्म हो जाएगा तो अज्ञान अभी तक नहीं रहता। अज्ञान है, अभी आपको साधन करके ज्ञान प्राप्त करने पर अज्ञान की निवृत्ति होगी। जो नित्य ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक है, तो आपको साधन करना क्या जरूरत है? आपको साधन करने पर आपको ज्ञान होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा, वह ज्ञान अज्ञान का नाश करेगा। तो जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान नित्य है या अनित्य है? उत्पन्न होगा तो अनित्य ही है, नित्य कैसे होगा? ज्ञान जो उत्पन्न होगा वो नित्य होगा, अनित्य ब्रह्माकार वृत्ति। तो इसका विशेष है आश्चर्यवत कच्चित वदती, कोई आत्म तत्व का कथन करता है तो कोई अन्य के में आश्चर्यवत कोई होता है, और आश्चर्यवत एनम अन्य श्रुणोती, सुनने वाले भी आश्चर्यवत कोई एक होता है। श्रोता कठोपनिषद में आता है तो श्रवणायापी बहुव्री हो न लभ्य, श्रवण करने के लिए बहुत को प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त होने पर भी नहीं सुन पाते हैं। वही आश्चर्यवत कोई होता है, सुनता है, कितने लोग सुनते हैं? भागवत के नाम कर स्थान नहीं मिलेगा, और कहीं नायक अभिनायक अभिनायिका आएंगे तो स्थान मिलेगा, ये हॉल कहाँ स्थान मिलेगा? वो जो समुद्र किनारे है ना, वहां भी स्थान नहीं मिलेगा। क्रिकेट खेलने वाले आ जाएगा, नाम लेने वाले पुरस्कार पर, क्या क्या नाम था हमको मालूम नहीं, वो कोई आ जाएगा, उसको देखने के कितने लोग होंगे, स्थान मिलेगा। कथाकार में ऐसे कथाकार तो हैं, वो स्थान यहां कथा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अलग स्थान बनाते हैं। ऐसे बहुत तो आपको मालूम है कथाकार, बहुत कथाकार है, वो कथाकार यहां आकर कथा करेंगे, यहां कथा करेंगे, यहां कथाकार बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। आज कथा करने बहुत स्थान है, बहुत है, किंतु वेदांत श्रवण करने वाले कितने हैं? वेदांत श्रवण करने वाले सबको वेदांत का यहां तो स्वाध्याय होता है, प्रवचन होता है, अभिनय हम साल भर चलता है, तो कितने स्वतः हो जाते हैं? भागवत होते हैं ना, नहीं हाल में जागा नहीं होता है, अब वेदांत में रोज प्रवचन स्वाध्याय तो होता है, यहां श्रोता तो कम है जितने तो भी कम होते, और जो है लगातार सुन सकते, कितने पूरा कितने सुनते हैं? पूरा सुनते हैं और लगातार सुनते हैं, एक दिन आए दो दिन नहीं आए, सुबह आए तो शाम को नहीं आए, शाम को आए तो सुबह नहीं आए, और कोई कभी कोई एक घंटा के बाद आया, कोई एक घंटा पहले चल जाता है, ऐसे भी होता है, एक घंटा के बाद आने वाले कुछ एक घंटा के पहले चले, तो सुनने वाले भी वही भगवान वही कठोपनिषद में यमराज कहते श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, तो आश्चर्यवत चयनम अन्य श्रुणोती, और श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चिदि। अच्छा सुन लेने के बाद भी कोई ज्ञान हो जाता है इतने जल्दी नहीं है, अहंकार त्याग करना पड़ता है, और जैसे सुनते उसके अनुसार चलना पड़ता है, खाली सुन लेने से ज्ञान हो जाता है? इसे आत्म तत्व को तो जानने वाला कोई विरल है, पश्यति कोई जानता है, शब्द से समझने वाला भी कम है, कोई बोलता है तो कम, आश्चर्य तो कोई होता है, सुनने वाले भी कोई एक सुनने वाले होते हैं, और सुनने के बाद भी कोई उसको जानता है, मनन करना, साक्षात्कार करना, कोई विरल होते हैं। श्लोक बोलो, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, यही प्रकरण अर्थ प्रारंभ हुआ था अशोचानन सशतम, उसका उपसंहार करते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि नत्वं शोचितुमर्हसि। सर्वस्य देह अयम देह नित्यम अवध्य, सबके देह में सब प्राणी के शरीर में अयम देही अवध्य नित्यम, नित्यम मतलब सर्वदा सर्वस्था सारे अवस्था में सब अवस्था में आत्मा देही अवध्य, उसका बध नहीं होता है क्योंकि निरवय आत्मा निरवय है, निरवय निष्क्रिय होने के कारण नित्य होने के कारण यह अवध्य है आत्मा देही आत्मा अवध्य सर्वस्य देही। इसलिए सर्वाणि भूतानि त्वं न शोचितुम् अर्हसि, भीष्म द्रोणादि मरेंगे मैं उनके मानने में मारूंगा, उनके उद्देश्य से शोक नहीं करना चाहिए। असच्चा नन्न शोचत्वम् प्रारंभ क्या था, ये शोचनीय नहीं शोक करने योग्य नहीं, उनके लिए क्या शोक करते हो, और एक के भीष्म द्रोणादि के लिए नहीं किसी के लिए भी। आत्मतत्व तो नित्य है अवध्य है, देह के नाश होता है, इस आत्मतत्व के विषय में लेकर के उनके उद्देश्य से शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात तो तुम अपना मार्ग अपने धर्म की रक्षा धर्म में चलो, अपना धर्म का त्याग नहीं करे, यही प्रकरणार्थ उपसंहार करते भगवान। श्लोक बोलो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।